तो चला गया बचपन, और साढ़े तीन वर्ष और उसमें लगा दो, ये पौगोलिक निकाल दिया। आठ वर्ष की पांच वर्ष तक भी ली जाती पौगोलिक। अब पांच से लेकर के आठ वर्ष की उम्र में कृष्ण की रासलीला आरंभ हो जाती है। ये आठ से लेकर के करीब दस तक, ये दो तीन वर्ष का जो समय है यही की सोच लिया। अब यहीं पर वृंदावन में वो तीन वर्ष, तो उस अनंत काल में जो गोलोक की लीला है वो कितनी दूर की आई होगी, अभी से समझ। उनकी सारी लीला 125 वर्ष की, और ये किशोर लीला हुई कितने हैं, और आज तो केवल एक दिन में उसी का वर्णन किया। और सब जो लीला है वो सब लीला करके थोड़े से दिन की, इसलिए कहते हैं जैसे वो जो लीला है यहाँ पर प्रकट हुई इसी को ब्रज का, किंतु बात ऐसी नहीं। इसलिए लोग कहते हैं जैसे वो जो लीला है वहां पर नहीं है, केवल यहीं पर है, इसलिए कहते हैं अनेक ऐसा समझते हैं कि कृष्ण गोलोक बिहारी हैं मित्र, कुछ काल के लिए ब्रज में प्रकट होकर के ब्रज लीला का कुछ रसा स्वादन किया था जो वहां पर नहीं हो सकता। यहां गोस्वामी पाद का मत नहीं, ये गोस्वामियों का मत नहीं है, गोस्वामी दिगे मते ब्रज बिहार, ब्रज बिहार भी, ब्रज बिहार मैंने वहां का ब्रज बिहार नित्य है, वहां से कुछ समय के लिए यहाँ पर जो लीला वहां है वही लीला यहाँ पर प्रकटित होती। नित्य चिन्मय धाम बोलो के नित्य अंतरंग प्रकोष्ठ का नाम ब्रज है। नित्य चिन्मय धाम जो वहां पर है गोलोक में, वहां गोलोक का अंतरंग प्रकोष्ठ का नाम ब्रज है। गोलोक तो इसको नहीं कहेंगे, वहां और उसका अंतरंग प्रकोष्ठ भाग जो है, प्रकोष्ठ माने वह भाग, उसको कहते हैं ब्रज, गोलोक नित्य धाम ब्रज। और जिस प्रकार से प्रपंच अवतार के समय में कृष्ण लीला करते हैं नित्य धाम ब्रज में भी उसी प्रकार का नित्य लीला करते हैं, जैसे यहाँ पर लीला करते हैं वहां पर स्थायी भाव में लीला करते हैं, यहाँ पर लीला कुछ क्षण के लिए बस इतना ही। हमारे रूप गोस्वामी इत्यादि में भी चैतन्य चैतन्यकार को वर्णन करते हैं इसी प्रकार से सब, क्योंकि कुछ देर पहले तृतीय में ये चौथा परिच्छेद है चैतन्य चैतन्य, तृतीय में लिखा है गोलोक सह वो यहाँ पर उतरा, ब्रज सहित कृष्ण अवतार यहाँ पर, इसलिए ब्रज के सहित जब आते हैं तब ब्रज वहां पर भी है, इसलिए वहां की लीला यहाँ पर अवतरित होती है, जो चीज वहां नहीं है यहाँ पर नहीं हो सकती, इसलिए उन लोगों का यह मत अत्यंत भ्रांत है, उस लोक में जो है वही लीला यहाँ पर अवतरित हुई। कविराज गोस्वामी तृतीय परिच्छेद में लिखा है अष्टाविंश चतुर्युगे द्वापर रेशे से ब्रज सहित है कृष्ण प्रकाश, कृष्ण स्वयं प्रकाशित होते हैं उस समय में, कब, अभी 500 वर्ष 5000 वर्ष पहले अभी कृष्ण प्रकट हुए थे गोलोक वृंदावन से, ब्रज को साथ लेकर, गोलोक लेकर के नहीं आए, क्या लेकर के आए, ब्रज को लेकर के आए, ब्रज की कितनी भूमि को लेकर के आए, 84 कोष की केवल भूमि लेकर के आए। राधा जी ने कहा था जहां पर ब्रज नहीं जाएगा, जहां गोवर्धन नहीं है, जहां पर जमुना नहीं है, जहां पर सखियां नहीं है, वहां पर मैं जाकर के क्या करूंगी, मैं वहां पर नहीं जाऊँ, तो कृष्ण ने कहा तुम्हारे लिए वे सब कुछ 84 कोष की भूमि पर्वत नदी जो कुछ है सब को लेकर के और कर, तब कृष्ण के साथ में वो आए। इसे स्पष्ट समझा जाता है ब्रज बोलिया एक टी चिंतामय धाम अचिंत पीठा, ब्रज नाम का एक गोलोक वैकुंठ धाम के अंदर में एक धाम है, उसी पीठ के सहित कृष्ण अपने चित्त शक्ति के द्वारा नित्य काल ही वहां पर रास विहार करते हैं और वहीं से इस प्रपंच में उदित होते हैं। गोलोक का वह अंतापुर है, गोलोक क्या है, राजभवन है, राजभवन के अंदर में राज दरबार भी और सब हाथी घोड़शाला इत्यादि सब राजभवन के अंदर, और उसका अंतापुर जो है जहाँ पर दूसरों का कोई प्रवेश नहीं है वो है अंतर, वही अंतापुर है ब्रजधाम। से नित्य ब्रजधाम व्यतीत पार्थिव रस की अन्यत्र स्थिति नहीं है, इसलिए वहां पर ही ब्रज की और पार्थिव रस की स्थिति है। तथा गोलोक अपेक्षा अनंत गुण उत्कृष्ट स्थान, गोलोक से भी अनंत गुण उत्कृष्ट है। ऐसा नहीं जो गोलोक और वृंदावन एक है इसलिए गोलोक में है वही वहां पर नहीं, गोलोक से भी अनंत कोटि। गोलोक का गोकुल का वैभव है। पहले किंतु उसको इस प्रकार से कहो जो गोलोक के अंदर ही गोकुल है, वहाँ पर ऐश्वर्य भाव प्रकाशित है स्वकीय और वहाँ पर परकीय भाव। प्रकट बजे अप्रकट ब्रज की विचित्रता केवल लक्षित हो रही है, वहाँ की कुछ भावनाएं यहाँ पर की है, असल में दोनों एक ही है। इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर जी ने यह विचार किया है। लोगों का ये विचार गलत है, विशेष करके तुम लोग उनका चैतन्य चैतामित मत पढ़ना, राधा गोविंदनाथ का नोक वाला। अभी वृंदावन से जो प्रकाशित हुई है ना चैतन्य चैतामित श्यामलील, हम उसी का अनुवाद करके दिया है, इसलिए उन्होंने सब गड़बड़ किया। उनके भावों को जरा सोच समझ करके अच्छी तरह से विचार करके पढ़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ ये कह रहे हैं ये जो लेखक हैं इसके प्रेम भक्ति चंद्रिका के, कुछ थोड़ी सी भावना तो लिया है फिर किंतु उसमें कुछ सुधार भी किया है। पहले तो ये कह रहे हैं कि गोलोक में ब्रजंगना दर्शा जे नित्य विहार करते थे सिख हमें स्वकीय भाव रसास्वादन, वहां पर रसास्वादन स्वकीय भाव का था। किंतु गोलोक में परकीय भाव है कि नहीं इस पर वो विचार करके कह रहे हैं। एकमात्र ब्रज भौम ब्रज ही भैया था कि, किंतु यह गलत, ब्रज भाव में नहीं है केवल। इस उसको कहते हैं गोलोक वृंदावन और इसको कहते हैं भौम वृंदावन। भौम वृंदावन मैंने यहाँ पर जो प्रकटित है, भौम वृंदावन में भी तीन अवस्था है, एक प्रकट, एक अप्रकट,
एक दृश्यमान
और एक दृश्यमान। अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो दृश्यमान है,
दृश्यमान
प्रकाश, इसमें वो सब चीजें नहीं दिखाई जाती किंतु स्थान वही है और लीला भी वही हो रही है, किंतु हम लोग अपने साधन के अभाव में इन चीजों को देखें, इसलिए उसको अप्रकट कहा जाएगा। अब वर्तमान जो स्थिति है ये
दृश्यमान प्रकाश,
दृश्यमान अप्रकट, जिस समय कृष्ण प्रकट होकर के लीला कर रहे थे वो प्रकट है। ब्रज बिना यहां नहीं अन्यत्र वास, इसलिए गोलोक भक्त संकल्प करें। वैकुंठ आदमी जो लीला का नहीं है वैकुंठ में ये सब लीलाएं मिलने बात ठीक है, किंतु इसका मतलब ये नहीं कि ब्रज में भी गोकुल के गोलोक वृंदावन में ये लीला नहीं है, ऐसी बात नहीं। इसलिए गोलोक वृंदावन में ये लीलाएं हैं वहां से ये और पर। जी गोस्वामी का भी विचार लिया है, अब ये विचार करते हैं कि वहां पर लीला है कि नहीं, अब हम इसके संबंध में हम कल विचार करें। और इसमें हम पूज्य लीलमणि की जो टीकाएं हैं, एक टीका है हमारे जी गोस्वामी की और एक टीका है विश्वनाथ चक्रवर्ती का, पहले हम जी गोस्वामी का लेकर के तब फिर उनकी टीकाओं का हम लोग कुछ थोड़ा सा अनुशीलन करेंगे, जिससे कि हम लोग समझ सके जैसे दोनों में क्या अंतर है, तो क्या है ये सब भजन के लिए साधन के लिए ये सब। हरे कृष्ण हरे चंद्रिका पाठ कर रहे हैं। जी गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विचारों पर हम लोग बात करें। साधारणों के लिए बोध गम्य नहीं, जो भजन में कुछ उन्नत हो सके हैं उन लोगों के लिए ये सब विचार करनी है। साधारण लोग वैदिक भक्ति का पालन जहां तक हो सके नियम के अनुसार में करें। धीरे धीरे जब उनका अधिकार होगा तो ये सब चीजें समझेंगे। फिर भी थोड़ा सा समय 10-5 मिनट मैं इसमें से बतला रहा हूं। श्रीमद् भागवत में राजपंचायत भाई इत्यादि का तात्पर्य पर किया भाव से ही, जिसके लिए जिसका सार हमारे रूप गोस्वामी ने अपनी प्रार्थना में किया है। गुरुवाक तया तया क्वापि दुर्लभम अन्य अन्य वीक्षण मित्र संदेश श्री गुरुभ्यं नंदयिष्यामि वार्तदा। वो प्रार्थना कर रहे हैं दोनों राधा और कृष्ण दोनों से मिलने में, उनके मिलने में बहुत ही बाधाएं हैं, दुर्लभ है उनका मिलना। क्यों? गुरुवाक तया, गुरु भाई का भय है। गुरु माने माता पिता ससुर सासुरी भाई बंधु परिजन, वो मिल नहीं सकते। प्रेम और बड़ा है जो सब व्याधमों को पार करके और अपने प्रिय वस्तु से मिलता है। जैसे उर्मिला ने अपने पति की बात मानी, उर्मिला कौन?
लक्ष्मण की स्त्री,
लक्ष्मण जी की पत्नी, वो वन में नहीं गए। भरत की पत्नी मांडवी, मांडवी भी अपने पति की बात मानी। सूत कृति ने भी अपने पति की बात मानी, वो लोग अयोध्या में रह गई और उनके कहते जैसा वो कहते थे घर में रह करके कौशल्या जी और माताओं की सेवा करने। सीता जी को रामचंद्र जी ने बहुत समझाया कि वन में मत जाओ, तुम्हारे व्यक्तिगत रूप से शारीरिक कष्ट होंगे, मानसिक कष्ट होगा, राक्षस लोग खा जाते हैं, बहुत तरह की विपत्तियां आएंगी। जितने तरह से समझाया वो मानी नहीं। मर जाऊंगी तो भी जैसे होगा आपका संग हम नहीं छोड़ेंगे। अंत में बाध्य होकर के रामचंद्र जी को सीता जी को साथ ले गए। जितनी भी बाधाएं थी किसी भी बाधा को उन्होंने नहीं माना, अपने पति के लिए उनके साथ थी। यहां पर ये प्रेम है, गोपियों का प्रेम इससे भी लाखों गुण उन्नत है। एक दो गुण नहीं, लाखों गुण उन्नत। इन्होंने दिखलाया जी अपने पतियों की तो बात क्या, भाई बंधु अपना जो कुछ था सब लोगों की बात को छोड़ करके हमारा भविष्य में क्या होगा इस बात की भी उन्होंने भय डर छोड़ दिया। संसार के लोग क्या कहेंगे इसको भी छोड़ दिया और छोड़ करके कृष्ण से मिली थी। इसलिए इनका प्रेम विश्व में सबसे ऊंचा। इसलिए बड़े बड़े ब्रह्मचारी लोग, सुखदेव गोस्वामी, उद्धव जी जैसे लोग, ये लोग भी उनकी चरण की धूलि की आकांक्षा थी। कितना ऊंचा प्रेम है। ब्रह्मा इत्यादि की तो बात ही क्या है। नारद जी जैसे प्रेमी लोग, यहाँ तक लक्ष्मी भी ऐसे प्रेम की आकांक्षा की, और इसीलिए उन्होंने बेलवन में बहुत दिनों तक आराधना की, किंतु उस चीज को पा नहीं सके। पाने की कोई संभावना भी नहीं है। लक्ष्मी जी अपना लक्ष्मीत्व नारायण को छोड़कर के कृष्ण के पास में जाएंगे वो नहीं सोच रहे। नारायण की स्त्री रहते हुए भी हमको इसमें दर्शन करना है, इसलिए लक्ष्मी जी को मिला नहीं। बेल में आज तक भी तपस्या कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि गुरुज इत्यादि का भय छोड़ करके, दोनों जब की समस्त प्रकार की बाधाओं को छोड़ करके और जब मिलते हैं मिथस, ऐसे मिलने में मैं उनकी सहायिका होकर के दोनों का संदेश दोनों को दे करके कब मैं मिलाऊंगी, ये रूप को शामिल। जब यह ऐसी बात होती, खराब बात होती, प्रभु का प्रेम यदि ऊंचा नहीं होता, रूप गोस्वामी सब कुछ छोड़ करके आए, घर बार स्त्री पुरुष जब विवाह हुआ होगा भी तभी उसको भी छोड़ करके आए, और वृंदावन में अकेले रह रहे हैं और आकर के भजन कर रहे हैं, तो वो ऐसी आकांक्षा क्यों करते। ये हम लोगों के आदर्श हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी कहा, प्रातः पीत पटे कुचो परी उषा गुर ना भरे लोचने बिंबौष्ठे पृथ्वीक्षते जटिले आसंदृश्यमाने महोत् वाचा युक्ति जुषा उषा ललित आशा संपताज्य उधा दृष्टेनां हृदि भीषतां राधां भुवं पादुकं। राधा जी हमारी रक्षा करें, हमारा पालन पोषण। कौन? सवेरे का समय श्रीमती जी सो रही है, और सोते समय में सवेरा हो गया, सूर्योदय हो गया, जंगले से सूर्य की रोशनी आ रही है, और श्रीमती जी के समस्त अंगों में वो रोशनी सूर्य की पीली पीली रोशनी पड़ रही है। इतने में इनकी नानी मुखरा दिया, जटला भी साथ में आ गई। अरे बहु माँ, मेरी बहुरानी सो रही है, उठो उठो उठो। और वो कह रही है, अरे नातनी बेटी तू अभी तक सो रही है, सोने का समय नहीं, आज तो इतवार का समय है, जल्दी से सूर्य की पूजा करना है, अभी तक तू सो रही, उठो उठो, इतनी देर से सोने की जरूरत नहीं। जटला कर रही है, अरे देखो तो तुम्हारे पति अभी गाय दोहन करके अभी हारों में बंगी में लटकाए हुए दूध के घड़े सब ला रहे हैं, अभी जाकर के लेकर के इसको रखना है, अब तू अभी सो रही है, जल्दी से उठो 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 कर रही है। देखा क्या, हठात श्रीमती जी के ऊपर में पीले कपड़े की वो चादर होती है, दुपट्टा वो पड़ा हुआ है, ये करके बार बार देखने लगे उनके तरफ में, ये तो कृष्ण का दुपट्टा, ये कैसे इसको आ गया। ललिता जी ने देखा, संदृश्य माने वो बार बार वो देख रही है, शंका हो रही है, ये कैसे आया, भीतर में क्रोध आ रहा है उसमें। ललिता जी देख रही हैं, ललिताया ललिता जी देखा जी, ये बार बार देख रही है और क्रोधित हो रही है, उधर अदर भी फड़फड़ा रहे हैं, कुछ कहना चाहती है, तो वो कहती, अरे जोखरी तू बार बार क्या देख रही है, हमारी सखी की तरफ में, बहू की तरफ में देख रही है, सूर्य की रोशनी आ रही है, इसमें कोई भी सफेद या हरा या कुछ भी रहेगा, सूर्य की रोशनी से रंग करके वो पीली सी दिख पड़ती है, तुम्हारी आंखें मारी गई हैं और वृद्धावस्था आ गई, तुम देख नहीं पाती और शंका की तू पिटारी है, बॉक्स खा जाना है। इसलिए तू शंका बार बार, तुम अपने जैसे जगत को देखती है, तू जैसे थी तुम ऐसे ही दूसरों को समझ रही है। हमारी सखी रात भर सोई नहीं, गर्मी के मारे अभी तक सो रही है। और कितने में क्या किया जी, अरे देखो ना कितना इधर में रोशनी आ रही है कि नहीं, देखो। फिर वो देखने लगी, इतने में विशाखा जी को इशारा करते, विशाखा जी ने वो हटा करके
नीला रंग दूसरा कपड़ा दे दिया।
अच्छा तुमको अब वो कहती कि देख जोखरी, एक तो आंखों से तुमको कम दिखता है इसलिए तुमने ऐसा देखा, अब देखो तो। वो कपड़ा झट उठा लिया और कहा जी अब देखो तो कैसा है, तो देखा जी हाँ
नीला।
तो अभी कहा जी वो सोच रही जी, मैंने ये देखा क्या झूठ देखा, ये जो लिखा किसने, रघुनाथ दास गोस्वामी। कौन से रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनके पिताजी बड़े भारी राज्य के मालिक हैं। भगवान की तरफ में बचपन से ही रुचि जब जाने लगी तो देखा जिसे, अरे इसको कैसे मना करें, ये तो भगवान का अपमान कर रहा है और भगवान के तरफ में इसको बड़ा भी होना रहा। बस अपने राज्य भर में देख करके बड़े धनी के घर की बड़ी अशुद्ध जमपरा एक छोटी सी किशोरी के साथ में उसकी शादी कर, ऐसी सुंदरी जो उसके समान उस समय में बंगाल भर में कोई सुंदरी नहीं थी, और उससे उनकी शादी कर। सोचा ये ऐसे लोगों के लिए यही सबसे बड़ी जंजीर है, जंजीर में बांधने से वो लड़का मानेगा नहीं, इसको भगवत भजन भुलाने के लिए ऐसे ही शादी कर दी। अपार धन संपत्ति, स्त्री का स्नेह, पिता का और माता का प्यार, किंतु उनको बांध नहीं सका। पिताजी ने कहा ये मानता नहीं है, मैया ने परामर्श दिया लोहे की जंजीर मंगा करके इसे बांध दो, कहां जाएगा, और पहरा रख दो पुलिस का, सिपाहियों का। उन्होंने कहा जिसको ऐसी सुंदरी का प्यार जिसको बांध नहीं सका, हम लोगों का स्नेह जिसको घर में नहीं रख सका, ये निर्जीव लोहे की या रस्सी क्या बांध सके, उसको नहीं बांध। भगवान ने माया कैसा बनाया, कोई रस्सी की जरूरत होती है, माया से समस्त लोगों का नकेल बांध करके रख दिया है, जैसे चाहते हैं वैसे घुमाते हैं। हम माया में पते हुए जीव, कनक कामनी प्रतिष्ठा इत्यादि ये सब बड़ी मायाएं हैं। पुरुषों को स्त्रियों के प्रेम से और स्त्रियों को पुरुषों को स्त्रियों के प्रेम से ऐसा जगड़ करके बांध रखा है कि वो टस से मस नहीं कर सकता, ऐसा माया निभा। वो तो भगवान की बहुत विशेष कृपा जिस पर हो, हनुमान जैसे लोग तब तो वो ये सबको छोड़ करके बहाना किसी प्रकार से लग करके बिना खाए राजपुत्र 20-25 दिन का रास्ता बिना खाए 4-5 दिन में पार करके के और पूरी चले गए महाप्रभु जी के पास। महाप्रभु जी ने इनको देखा, राजकुमार और इसके बाल बिखर रहे हैं, कपड़े फट रहे हैं, मैले कुचले हो गए, एक दिन भी स्नान उसने बीच में नहीं किया, खाया क्या, कहीं मुढ़ी चना कोई दे दिया खा लिया। बोलते हैं कि अरे तुम नरक के कीट से, कीट के नरक कैसे, पैखाने के कीट से, ऐसे नरक से आज तुम निकल करके कैसे आ गया, इसे निकलना बड़ा भारी मुश्किल है। पहले इन्होंने इनको मना किया था कि मत जाना,
घर में जाओ, लोग ना हो,
घर में लौट जाओ, घर में रहो। और वही जबकि वहां पर पहुंचे तो कहते हैं कि आज तुमने बहुत अच्छा किया, आज ऐसे कुप से तुम निकल करके हमारे पास में। खाते क्या थे, पहले तो बाजार में जाकर के कुछ मांग लेते थे, वहां पर गोविंद बाजार है उसमें,
आनंद बाजार
उसमें कुछ चावल दाल तरकारी मिल गया, कुछ मांग लिया खाते। कुछ दिन के बाद उसने छोड़ दिया। सिंह दरवाजे पर खड़े रहते, यदि कोई आ गया देख लिया तो उनको दे दिया। कुछ दिन में उसको भी वृत्ति को छोड़ दिया। किस लिए छोड़ दिया? इसलिए छोड़ा कि जैसे वेश्याएं खड़ी रहती हैं अपने घर पर, सोती कि ये आदमी आएगा हमको तो रुपया दे जाएगा, वो चला गया। फिर ये आ रहा है ये जरूर आएगा, वो भी चला गया ये तो जरूर आएगा। ऐसे करते 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 सारी रात कोई नहीं आया और ऐसे ही लोगों की प्रतीक्षा में खड़ी रही। अंत में देखा जब कुछ नहीं आया, कहा जैसे अब इन पुरुषों की एकदम आशा ही छोड़ देनी चाहिए, बस आशा छोड़ दी, बस आराम के साथ में सो गए। जब तक ये ऐसी आकांक्षाएं लगी रहती है, चैन नहीं लेने दी, अर्थ की लालसा, संसार की लालसा, ये सब लालसा है। तो ये अंत में उसको छोड़ करके ठाकुर जी का प्रसाद बनता था जिस घर में, रसोई घर में, उसकी नाली से माण बह करके जाता था, उसमें दो चार अन्न के दाने चले जाते, उसको गाय खाती थी, अभी भी खाती हैं, और जो बच रहता वो एक दिन में सड़ जाता, उसको उठा लाते और उठा करके धो देते पानी से मल मल करके उसका सड़ा, और उसमें थोड़ा सा नमक दे करके एक दो ग्रास खा, ऐसे जीवन बीता। कुछ दिन के बाद में वो भी छोड़ दिया, वृंदावन में आए, बस इतना सामर्थ्य लेकर के बस पी लेते और कुछ नहीं लेते, दिन रात भगवान के भजन करते। ऐसा व्यक्ति ये लिख रहा है, ये साधारण व्यक्ति है जिन्होंने काम को और सब चीजों को जय कर लिया है, दिन रात भगवान का भजन करते हैं, स्त्रियों का कोई संबंध ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर रहा है, कौन सा भी जो बतलाया जटिलावर। तो ये सब लीलाएं कैसी होंगी? अपराधित लीलाएं हैं, इसमें जगत की कामना की सभी भूख गंध तक। इसलिए श्रीमद् भागवत की लीला कैसी है, इसलिए नारद प्रभु की जो ऋषि महर्षि लोग हैं उन लीलाओं की वंदना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु, एक समय चैतन्य महाप्रभु पुरी में थे, कहीं जा रहे थे, उनके साथ में गोविंद जी थे। इतने में कोई लड़की थी देवदासी, वो झुरमुटों से होकर के जा रही थी जगन्नाथ जी के मंदिर में, एक जगह से आ रही थी मंदिर में जा रही, और गीत गोविंद के पद को गा रही थी। शीत कुच कमला
कमला
कुच मंडल भीतर कुंडल ए कलित ललित बनमाल जय जय देव, ये गा रहे। सुनते ही महाप्रभु एकदम पागल हो गए, और पागल होकर के एकदम दौड़े उसके तरफ में। किस लिए दौड़े? आज हमारे कानों में किसने अमृत ढाल दिया? वो स्त्री है या पुरुष है या कौन है, इसका शरीर का भान नहीं रहा, मैं कौन हूं इसका भी भान नहीं रहा, बस दौड़े। उनके कपड़े जो उत्तरीय है वो भी कांटे में लग गए, वो भी फट गए, उनको कोई मालूम नहीं, एकदम सरपट दौड़ रहे हैं उसको पकड़ने के लिए, आलिंगन देने के लिए। आज तुमने हमको कृतार्थ कर दिया, हमारा जीवन आज कृतार्थ हो गया, सफल हो गया, ऐसे तुम्हारे कीर्तन को सुनकर। इतने में गोविंद जो दौड़ रहे थे, जब देखा जैसे ये पकड़ में नहीं आ रहे हैं, तो देखा जी यदि उस स्त्री को छू दिया तो छू देने से क्या होगा, जब इनको होश आएगा अभी समुद्र में कूद करके अपने प्राणों को दे देंगे। कभी भी किसी की स्त्री का मुख नहीं देखते हैं,
स्त्रियां
क्या घृणित वस्तु, घृणित से नहीं, मनुष्यों की कामनाएं ना हो, इसलिए लोगों को साधकों को इससे बचाने के लिए बहुत कृपालु हैं, इसलिए अधिकांश साधक इसीलिए चले जाते हैं। हमारे मठ में भी आए देखो ना, कुछ लोग चले जाते हैं, ये स्त्री के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए, स्त्री स्त्री के लिए पुरुष, यही माया है दोनों, इसलिए इसे बच करके रह करके भगवान का भजन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने तो वो दौड़े, जब गोविंद से जब रहा नहीं गया, देखा जब पकड़ में आएंगे नहीं, तो झट उनको जोर से बोले, अरे वो लड़की गा रही है, स्त्री गा रही है, बस कान में जब गया तो झट खड़े हो, होश आया, देखा जो सचमुच में वो लड़की है। एकदम निकट में पहुंच गए थे, दो चार हाथ की दूरी में, एक मिनट सेकंड की देर होती तो उसको पकड़ लेते, एकदम खड़े हो गए, बोले गोविंद आज तुमने हमको बचा दिया, यदि मैं किसी प्रकार से इस स्त्री को मैं स्पर्श कर दिया होता तो समुद्र में डूब करके मैं अपने प्राणों को जरूर। ऐसे चैतन्य महाप्रभु उसी भाव में सब समय रंगे रहते हैं। वो एक श्लोक सुना श्रीमद् भागवत का, तव कथामृतम तप्त जीवनम गंभीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम सुमत आततम विगणंतिते भूतारे। ये सुन करके एकदम पागल हो गए, और जिस राजा को विषय लोगों को कभी दर्शन नहीं देंगे उसको सर्वस्व उन्होंने कृपा करते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु सब समय ऐसे ही श्लोकों का आस्वादन करते हैं, जो पहले बार हुआ है वो इसी देने के लिए जगत में, इसी का आस्वादन कराने के लिए जगत में आए। ऐसे ये चैतन्य महाप्रभु का अभिष्ट यही था, इसलिए कहते हैं एक जगह अस्मिन लोके, श्रुतियों में कहा गया अस्मिन लोके पुरुषो यथा क्रतुर भवति स इतः प्रत्य तथा भवति। इसमें श्रुतियों में ऐसा कहा गया है यथा क्रतुर भवति,
जैसा यज्ञ होता है,
नहीं यज्ञ में जैसा संकल्प होता है, संकल्प के ऊपर दे है, जैसा संकल्प होता है इस लोक में ऐसे ही वो पुरुष ऐसा ही बनता है। तात्पर्य क्या, वो ब्रह्म संहिता
जो जो जानते हैं,
जैसे भावों को ग्रहण करके भजन करता
है, ब्रह्म संहिता,
ब्रह्म संहिता का
चिन्मय रस प्रतिभा
नहीं, हाँ जद भाव भाव ये जद भाव भाव, जैसे भाव को करेगा ना सिद्धि में वैसे ही होगा, और उसी को साधने के धाम चाहिए सिद्ध देह तहां पाए उसी को बतलाया गया। तो जिस प्रकार से क्रतुर भवती संकल्प जैसा होगा सलकम के अनुसारी में उसको फल मिलता है, दूसरा फल मिलता है। ऐसे ही इस श्लोक को हमारे रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है, और उसकी ऐसे ही व्याख्या है।
तो यह प्रसंग यदि लिया जाए तब तो स्थायी भाव की स्थिति की बात नहीं हो सकता
है।
स्थायी भाव जो नित्य सिद्ध भाव है जीव के अंदर में,
उसी के अनुसार में उसका संकल्प होगा, ये समझ गया। जिसके हृदय में अभी मैं कोई चीज पढ़ रहा था उसमें बतला रहा है, जैसा जिसका नित्य सिद्ध देह का स्वरूप है उसी के अनुसार ही भजन करने पर, जबकि वो ब्रजनाथ और विजय कुमार को उनके गुरु बतला रहे, यही बात, जैसा उनका सिद्ध देह है नित्य देह उसी के अनुसार में भजन करने पर जब ये कामनाएं दूर हो जाती हैं, अनर्थ दूर होने लगता है, तो भीतर से वैसे ही रुचि होगी और ऐसे विषय पर उसका संकल्प हो जाए, ऐसे जैसे तैसे नहीं हो जाए, इसलिए वो संकल्प उसी के अनुसार में होता है, इसलिए उसको मान लिया है।
किसी के अंदर यदि मधुर भाव हो और भी भाव होंगे या नहीं,
हो सकता है क्रमशः हो, किंतु जो जिसका मान लिया कि सत्य है या दास्य है उसको मधुर का नहीं होता, यदि होता है तो सिद्धि होगी।
विषय के प्रति मधुर नहीं हो सकता है,
किंतु और आश्रय के प्रति मधुर में वही पक्क रूप में नहीं मिलता है। आज अधिक रात
आज कीर्तन आशे।